प्रथानंदन अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम पुरुष दिव्य का चिंतन करते हुए उसको प्राप्त हो जाता है। आपके मन में अद्भुत शक्ति है। आपका मन नई सृष्टि बना सकता है। विश्वामित्र के मन ने बना के देखा है। आपका मन मित्र भी बनाता है, शत्रु भी बना देता है। आपका मन दूध में से कितनी वैरायटियां बनाकर बाजार में रख रहा है। हालांकि दूध को विकृत करके बनाई हुई वैरायटियां स्वास्थ्य के लिए तो मीठा विष है, लेकिन मन जीभ के साथ चटोरापन होता है तो पनीर खाए, फिर बुढ़ापे में उसकी खबर तो आए ले लेता है वो पनीर। मावा मिठाई स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन दूध को फाड़कर अथवा मावा बनाकर पनीर बनाकर या और कोई दूध को विकृत करके बनाई हुई चीजें स्वास्थ्य को जान स्वास्थ्य संबंधी विचारकों का कहना है कि बहुत हानिकारक है, लेकिन मन ने ये वैरायटियां बना दी। छीण की मिठाई, बंगाली मिठाई, फलानी मिठाई, ढिंगनी मिठाई, ये दूध की जो बनी हुई मिठाइयां है स्वास्थ्य के लिए तो हितकर नहीं है, लेकिन मन ने ये भी बना दी। और तुम्हारे मन ने स्वास्थ्य प्रद भी वैरायटियां बना दी। तुम्हारे मन ने अपने लिए स्वर्ग की यात्रा चुन ली या नरक की यात्रा चुन ली, यक्ष योनि में जाने की यात्रा चुन ली या गंधर्व किन्नरों की यात्रा चुन ली। जहाँ रुचि होती है मन की, वहाँ प्रवृत्ति होती है। और जहाँ प्रवृत्ति होती है, रुचि होती है, प्रीति होती है, प्रवृत्ति होती है, वैसे जगह पर पहुंच जाता है। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो भगवान आपके मन की चाह कैसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ पालो कि फिर पाना ना रहे, ऐसा कुछ जान लो कि फिर जानना बाकी ना रहे, और ऐसी जगह पर पहुंचो कि फिर गिरने का, पतन होने का दुर्भाग्य ना आए। अभ्यास तो सभी लोग करते हैं। माइयों को अभ्यास है भोजन बनाने का, कई माइयों को गपशप लगाने का अभ्यास होता है, कईयों को चुगली करने का अभ्यास होता है, तो कईयों का चुप रहने का सुंदर अभ्यास होता है। दुकानदारों का दुकानदारी का अभ्यास होता है, वकीलों को वकीलात का अभ्यास होता है, न्यायाधीशों को न्याय देने का अभ्यास होता है, नेताओं को नेतागिरी का अपना अभ्यास होता है। सब अभ्यास तो सभी करते हैं, लेकिन कृष्ण उस अभ्यास में योग मिलाना चाहते हैं आपका। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्ते न, अभ्यास योग से आप युक्त हो जाओ। चेतसा नाने गामिना, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करते करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए उसको प्राप्त होगा। माँ से मिलो, माँ की सेवा करो, पुत्र को निहारो प्यार से, कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र की गहराई में चम चम चमकने वाला मेरा चैतन्य इस समझ के अभ्यास को वहां दोहराओ। आईना देखो, मना नहीं है। ये देखो वो देखो, लेकिन मन को कहो कि जो दिख रहा है वो एक दिन जल जाएगा या तो गड़ जाएगा, लेकिन जिससे दिख रहा है वो परमेश्वर मेरा, मैं आत्मा चैतन्य। हो गया अभ्यास। व्यवहार काल में सत्य की खबर मन में बार बार आवृत करे और ध्यान काल में उस चैतन्य स्वरूप परमेश्वर में चित्त को लगाए, ये हो गया अभ्यास। धारणा तुल पतंजलि महाराज ने कहा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक देश में एक स्थान में चित्त को लगाना उसको धारणा कहते हैं। 12 निमेश एक जगह पर चित्त लगे, धारणा हो गई। ऐसी 12 धारणा हो जाए तो ध्यान लगने लगेगा। ऐसे 12 गुनाओं से हो जाए तो फिर सविकल्प समाधि होने लगेगी। सविकल्प समाधि होते ही चित्त में सामर्थ्य आने लगेगा। सविकल्प समाधि के भी भेद है, विचार अनुगत, विचारानुगत समाधि, ध्यानानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, इस प्रकार की भिन्न भिन्न भाव समाधि, भिन्न भिन्न समाधि। लेकिन उस समाधि से जो चित्त को सुख मिलता है, जो मन बुद्धि की ऊंचाइयां होती है, वो तेल साबुन पफ पाउडर लाली लिपस्टिक आदि साधनों से नहीं होती। तो अभ्यास योग से युक्त होकर अपनी चेतसा अन्य गामिनी न हो, अन्य अन्य प्रवृत्ति करें, लेकिन अन्य अन्य में छुपे हुए अनन्य पर दृष्टि रखे, तो वह चित्त परम पुरुष दिव्य पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा मय हो जाता है। चित्त चेतन को ध्याए, चित्त चेतन रूप भयो है। चित्त विषयन को ध्याए, विषयन रूप भयो है। चित्त शत्रु को ध्याए, शत्रु रूप भयो है। तो अपने चित्त को उस चैतन्य परमेश्वर के ध्यान में, परमेश्वर के चिंतन में और परमेश्वर के निमित्त कर्म में लगाओ, तो आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। आपका भोजन बनाना भी कर्म योग और झाड़ू देना भी कर्म योग हो सकता है। सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली महिला को तनख्वाह मिलता है, वो नौकरानी। घर में झाड़ू लगाने वाली मां, बहन, भाभी, बहन आदि जो भी है, वो नौकरानी नहीं कही जाती, उनकी वो सेवा है। लेकिन शबरी भीलन गुरुदेव के द्वार पर मतंग ऋषि के आश्रम में बुहारी लगाती है, वो नौकरानी नहीं है, उसकी वो नौकरी नहीं कही जाती, क्योंकि उद्देश्य पैसा नहीं है। शबरी का उद्देश्य केवल अपना परिवार मात्र नहीं है, शबरी का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। उसका झाड़ू लगाना पूजा बन जाता है। झाड़ू लगाने का कर्म तो वही का वही है, लेकिन उद्देश्य, आप कृपा करके अपना उद्देश्य भगवत सुख पाने का उद्देश्य बना लो, भगवत ज्ञान पाने का उद्देश्य बनवा लो, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लो, भगवत रस छलना छलकाने का उद्देश्य बना लो। जब उद्देश्य बनाया तो उसके अनुरूप आप जयपुर से अहमदाबाद अथवा कलकत्ते या दिल्ली जाने का उद्देश्य बना देते हो, फिर पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से, बस से, इंटरसिटी से, जहाज से, जैसे भी जाओ, लेकिन आप वहां पहुंचोगे। बीच में कहीं रुकते हो, लेकिन उद्देश्य है तो रुकते हुए भी निगाह आपकी उधर होती है। ऐसे ही बीच में आप उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का बना लो, लेकिन आपकी यात्रा पैदल जैसी है, साइकिल जैसी है, तो कहीं रुकोगे, स्वर्ग में रुकोगे, जनलोक तपलोक महलोक में कहीं रुकोगे, लेकिन उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होगा, तो आपका मन फिर से आपको यात्रा करा के देर सवेर परम पुरुषम दिव्यम याति पाथनु चिंतयम के तर सिद्धांत से पहुंच देगा। श्री कृष्ण ने वन विहार का कार्यक्रम बनाया, ग्वाल मित्र भोजन किए, दोपहर बिताई, शाम तक रहना है, विचरण करना है। कुछ ग्वाल मित्र इधर उधर दाएं बाएं सहज स्वभाव वन में विचरण करते गए। कुछ ग्वालों ने देखा, बलराम और ग्वालों ने देखा कि एक पुराने कुएं में क्रिकेट पड़ा है। अपने साफों की रस्सी बनाकर क्रिकेट को निकालने के लिए सारे प्रयत्न विफल गए। तब कृष्ण के पास आए, श्री कृष्ण ने उस क्रिकेट को निकलवा लिया, उस पर अपना करुणामय स्पर्श करते और निगाह डालते ही क्रिकेट की अधोगति का अंत हुआ। वो क्रिकेट का जीव देव रूप धारण करके प्रकट हुआ, श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उस देव पुरुष को कृष्ण को नमन किया। देव पुरुष ने सब कुछ जानते श्री कृष्ण ने देव पुरुष से अनजान होकर पूछा कि तुम कौन हो। तब वो देव पुरुष कहता है कि प्रभु, पूर्व काल में मैं बड़ा पराक्रमी राजा था। जिन पराक्रमी राजाओं की भाट चारणों और ब्राह्मणों से या लोकों से आपने गाथाएं सुनी होगी, तो उन पराक्रमी राजाओं में दानवीर राजाओं की विशेष गाथाएं आपने सुनी होगी, और उन दानवीरों में भी जो सबसे विशेष दानवीर हो उसका भी नाम आपके सुनने में आया होगा। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की वो कोई नहीं गिन सकता है। नाथ, उन यशस्वी दानवीर राजाओं में मेरा पहला नाम आता था। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम राजा नृग हो क्या? बोले, प्रभु ठीक आपका अनुमान है। राजा नृग इतना दानवीर, इतना यशस्वी होते हुए भी परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना पाए, क्योंकि सत्संग नहीं मिला होगा। जयराम जी की, सत्संग जीवन का कल्प वृक्ष है। जिसको सत्संग में रुचि नहीं है वो बड़ा अभागा है। चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी सत्ता हो, कितनी भी और सामग्री हो, और कितना भी स्वर्ग का पासपोर्ट देने का सामर्थ्य हो, ततः किम शंकराचार्य कहते हैं, शरीरम स्वरूपम, शरीर स्वरूप है, मेरुतुल्य धन है, लोकों में कीर्ति भी है और इंद्रिय संयम भी है, राजे महाराजे चरणोदक लेते हैं, पूजते हैं, लेकिन गुरु चरणों में, गुरु तत्व में प्रीति नहीं, तो आद्य शंकराचार्य का गुरु अष्टक कहता कि ततः किम। आखिर क्या इस संयम का फल भी क्या, इस दान का फल भी क्या, इस सुयोग्य होने का फल भी क्या? पत्नी मधुर भाषिणी है, बेटा आज्ञाकारी है, शरीर स्वस्थ है, मन संयत है, इंद्रियों का संयम है, लेकिन उद्देश्य अगर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है तो आखिर वर और श्राप देने का सामर्थ्य आएगा, वाहवाही भोग कर फिर कर्म बंधन में फंसेगा और क्या करेगा। इंद्रिय संयम से वर और श्राप देने का सामर्थ्य आता है, दान पुण्य करने से और संयम रखने से यश होता है, लेकिन आखिर यश भी होगा तो इस शरीर का होगा, सुख भी मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, और शरीर तो जल जाएगा, तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा। अगर थोड़ी भी सात्विकता है बुद्धि में तो आदमी परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बनाए बिना नहीं रुकेगा। अगर सत्संग पच गया है थोड़ा बहुत तो ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य ही बनना चाहिए। नृग राजा को सत्संग नहीं मिला होगा, अजराजा की नाई, जनक के कुल में अजराजा था, उसने भी बहुत सारी योनियों की यात्रा करने के बाद सत्संग की शरण ली, सर्प योनि से छुटकारा हुआ। ऐसे कृष्ण के दर्शन और दो वचन रूपी सत्संग से इस नृग की भी क्रिकेट की योनि छूटी। नृग ने कहा कि भगवान, मैंने बहुत सारे पुण्य किए, मरने के बाद मेरे शुभ अशुभ की तुलना हुई। पूछा गया कि शुभ कर्म का फल भोगोगे स्वर्ग आदि के पहले अपने पाप का फल भोगोगे, क्योंकि जब तक कर्म का करता है तब तक उसके फल भी मिलते हैं, सुख दुख नरक स्वर्ग आदि। कर्म अगर ईश्वर अर्पित हो जाए और शुभ कर्म में रुचि हो, उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का हो जाए, तो फिर कर्म बंधन नहीं होता। बाकी तो सभी लोगों को कर्म बांधते हैं। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम्। शुभ अशुभ कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जब तक ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, अशुभ से विरक्तता नहीं है और शुभ ईश्वर को अर्पित नहीं करते ईमानदारी से, तब तक कर्म बंधन पीछा नहीं छोड़ता है। सदियां बीत गई, कर्म किए फल भोगे, फल भोग रहे नए कर्म कर रहे, चक्र का ही चल रहा है। बुद्ध कहा करते थे, हे भिक्षु को, ये विशाल सरोवर भी तुम्हारे आंसुओं का अगर एकत्रीकरण किया जाए तो इतना बड़ा सरोवर हो सकता है कि ये विशाल सरोवर भी नन्हा दिखे। उतने जन्मों में और इतने सारों तुमने आंसू बहाए हैं। और ये जो सामने बड़ा पहाड़ दिख रहा है, हर मनुष्य जन्म की और इतर जन्मों की तुम्हारी हड्डियां एकत्रित करे तो इस पहाड़ को भी मात कर जाए, उतने तुमने जन्म लिए। अब जरा सावधान हो, अपने आत्म शांति में आओ, अपने बोध स्वभाव में आओ, अपने ज्ञान स्वभाव में आओ। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण योग की बात 64 बार दोहराते हैं। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से योगी अधिक है। तपस्वी तप तो करता है लेकिन उद्देश्य है कि तप करके स्वर्ग में जाऊं, तप करके प्रसिद्ध हो जाऊं, तप करके राजा बनूं, तप करके अगले जन्म में ऐसा बनूं। तो ऐसे बनने के लिए तप करता है, देर सवेर बनेगा, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है। ऐसा योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, गीता के 6 अध्याय ने कहा। तपस्वी भ्यो अधिको योगी ही, ज्ञानी भ्यो मत अधिकाहा। चार वेद छड दर्शन जानता है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा न्याय इन सब को चाट गया है। अच्छा है, धन्यवाद है, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो उस विद्वान ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि अपने मन को, अपने चित्त को चैतन्य के योग में विश्रांति दिला रहा है। कर्मी भ्योश्च अधिको योगी ही, कर्मकांड में निपुण है, एकादशी के व्रत की महिमा जानता है। गृहस्थी जीवन में 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की अवश्य करनी चाहिए, 4 चतुर्मास की कृष्ण पक्ष की एकादशियां करनी चाहिए। स्वास्थ्य लाभ, पुण्य लाभ और श्री हरि की प्रीति आदि चाहे तो वो भी मिलता है, वो जानता है, लेकिन वो व्रत रखते हुए भी अपना उद्देश्य कर्मी का स्वर्ग आदि यश आदि है तो उससे वो योगी उत्तम है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात योगी भवा अर्जुना। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अपने प्यारे को कहते कि तुम योगी हो जाओ। तो इस जयपुर के सत्संग मैदान में हम राजस्थान वासियों को कहते कि तस्मात योगी भवा मम श्रोता, तो क्या कमी है, क्या आश्चर्य। आप योगी हो जाओ और मैं योग बताता हूँ आपको, सहज योग, सरल योग बताना वही उचित है जो सामने वाला कर सकता है। पंडिताई दिखाना अलग बात है और सामने वाले के हित से अंतःकरण छलका कर बोलना वो अलग बात है। फिर भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषाम, इन योगियों में, सब योगियों में भी मेरे मत में अगर तू योगी पूछता है श्रेष्ठ कौन है तो सुन, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा से मदगत होता है मेरे परायण। योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता, जो श्रद्धा से मुझ अंतर्यामी परमेश्वर को भजता है वो मेरे मत में तम योगी है। फिर भी हमारे सनातन धर्म की वन वे ट्रैफिक नहीं हमने देखी। आपको ईश्वर चाहिए तो ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, लेकिन आप चाहते कि हमारे कुल खानदान में अच्छी आत्माएं आए, दिव्य आत्माएं आए, तो आप श्राद्ध कर्म करिए और श्राद्ध के दिन जिनका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उनका सुबह मानसिक आह्वान कर लीजिए, फिर कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा उनके लिए आसन लगवाइए, उनका स्थान बनाइए कोई भी छोटी सी जगह पे, सूक्ष्म अंतःक्षरी वाले होते हैं। फिर आप भगवत गीता के सातवें अध्याय का महत्व पढ़िए और सातवें अध्याय का पाठ करिए, हाथ में अंजलि लीजिए और ये पाठ का, गीता के सातवें अध्याय के पाठ का पुण्य हम फलाने फलाने हमारे पिता पिता माता माता परदादी जिनका भी नाम पूरा नाम कुल गोत्र का उच्चारण करके आप वो जल तुलसी माता में अर्पण कर दीजिए अथवा किनारे रख दीजिए। बाद में ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण पान मसाले का गुलाम न हो, सनो वाला न हो तो अच्छा है। आप पोस्ट में पैसे जमा कराते हैं तो पोस्ट में पैसा जमाने का जमा लेने वाला पोस्ट ऑफिसर अथवा अधिकारी ऑफिशियली होना चाहिए। रास्ते जाने वाले व्यक्ति को पोस्ट के यूनिफॉर्म देखकर पैसे नहीं दिए जाते। ऐसे श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को खिलाएं जो सचमुच में सनातन धर्म में प्रीति रखता हो, अथवा तो निर्दोष स्वभाव की कन्या हो, 10-12-11-13 साल के भीतर भीतर के। श्राद्ध करते समय आंखों से आंसू गिराते गिराते रोते रोते अगर श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध का सत्व असुर लोग छीन लेते ले जाते। श्राद्ध के समय बड़े व्यक्तियों को आमंत्रित न करें, नहीं तो उनका ध्यान रखने से पितरों का अपमान होने की संभावना रहती है। बोले महाराज अब ये आधुनिक जमाना है, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें ऐसा बरगलाया जाता है कि क्या तुम्हारे हिंदू लोग बेवकूफ हैं, बाप मर गया 50 साल हो गया और ब्राह्मण को खीर खिला रहे, पूरी खिला रहे, सिरा खिला रहे, मट्ठा टेक रहे, ब्राह्मण को खिला रहे, मेरे बाप को मिलेगा नथिंग। ऐसे ऐसे करके हमारे बच्चों को बहका देते हैं तो बाबा जी अब क्या करना। तो उनको सुना दो कि भाई देखो ब्राह्मण को अभी आपने भोजन करा रहा, आपके पिता दादा परदादा को 50 साल 100 साल 200 साल हो गए मान लो, तो वैदिक संस्कृति का इतिहास और ज्ञान उन बेचारे पादरियों को पल्ले नहीं पड़ा, उनको तो दूसरों के धर्म की निंदा करके और अपने धर्म में घसीटने का पगार मिलता है। दूसरे के धर्म का ठीक से अध्ययन किया उन पादरियों ने तो हिंदू धर्म की शरण ले ली। पादरी आवण हो चाहे श्यामलाल सक्सेनामा से सैंपल सेक्शन बना हो, पीएचडी का विद्यार्थी अथवा एवन स्टॉक्स हो, जिन जिन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया उनका सिर झुक गया श्रद्धा भक्ति से, चाहे अमेरिका के तत्वचिंतक मार्क्स ट्वेन हो, चाहे यूरोप के तत्वचिंतक एचएम मुलेम हो, चाहे महात्मा थोरो हो, चाहे उनका शिष्य एमर्सन हो। महात्मा थोरो को एमर्सन ने कहा मैं आपको सुरक्षित जगह पे ले जा रहा हूँ, ये सेह कुटिया में सांप और बिच्छू का उपद्रव है। महात्मा थोरो ने हंसते हंसते भगवत गीता दिखाई कि मेरा भय और उपद्रव उस दिन से चला गया जिस दिन से मैं भगवत गीता कृष्ण की गीता समझने लग गया। महात्मा थोरो के पुस्तकों को गांधी जी प्रेम से पढ़ते थे। महात्मा थोरो को एमर्सन ने कहा मैं आपको सुरक्षित जगह पे ले जा रहा हूँ, ये सेह कुटिया में सांप और बिच्छू का उपद्रव है। महात्मा थोरो ने हंसते हंसते भगवत गीता दिखाई कि मेरा भय और उपद्रव उस दिन से चला गया जिस दिन से मैं भगवत गीता कृष्ण की गीता समझने लग गया। महात्मा थोरो के पुस्तकों को गांधी जी प्रेम से पढ़ते थे। एक बार अंग्रेजों के बीच गांधी जी मुसाफरी कर रहे थे यूरोप में, पूरी ट्रेन में लगभग गोरे गोरे थे, हिंदुस्तानी ये मोहनलाल करमचंद थे। कुछ पादरियों ने इनको प्रसिद्ध पाया हिंदुस्तान में, बहुत लोग इनको सुनते हैं, उन्होंने अपने चुंगल में लाना चाहा मोहनलाल को, और लोगों ने भी स्वर भराया और आखिर इतना प्रेम भरा और नम्रता भरा और राजनीति भरा आग्रह किया गांधी जी को कि एक बार आप हमारे रॉकस्पेलर कन्वेंशन हॉल में चली है जहां धर्मांतर किया जाता है और हम प्रेयर करेंगे और आपका मन बदलेगा। गांधी जी कच्ची मिट्टी के नहीं थे, उनके अति आग्रह पर गांधी जी गए तो सही, लेकिन चित्त में राम नाम का उच्चारण बना रहा। उन्होंने अपनी प्रेरणा की, जो कुछ करना था सारे दाव पेच किए। गांधी जी ने उसके बाद कहा कि आपके सर्मन ऑफ माउंटेन पर जो उपदेश दिया है बाइबल में, उससे गीता का ज्ञान बहुत आगे की खबर सुनाता है, और राम राम से जो मुझे शांति मिलती है, ऐसी शांति आपके यहां मुझे नहीं मिली। गांधी जी जिए तब तक राम नाम की शरण रहे, गीता की शरण, और जब गोड़से की गोली लगी धड़ाक राम, दूसरी गोली लगी गांधी जी को धड़ाक चित्त से आवाज आया राम, और तीसरी गोली ने धड़ाका किया तब भी मोहनलाल के चित्त से निकल गया राम। जिए तो राम में और मिले तभी भी राम में। 432,000 वर्ष का कलयुग दुगना, द्वापर तिगना त्रेता और चार गुना कल सतयुग, 42,32,000 वर्ष बीतते, 42,32,000 वर्ष बीतते तो एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मन्वंतर होता है। ऐसे 14 मन्वंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी 7वां मन्वंतर चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5,200 और करीब 20 वर्ष हुए हैं, ऐसा इतिहास तुम्हारे भारतीय संस्कृति का है, दूसरों का नहीं है। कुछ यूरोप के विद्वानों को मैं शाबाश दूंगा, वो कहते हैं 5,000 वर्ष नहीं, पिछले 60,000 वर्ष से मानव संस्कृति वजूद में आई। कुछ 90,000 वर्ष तक की छलांग मारते हैं, लेकिन योग वशिष्ठ महारामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में आता है कि श्री कृष्ण 16 बार आए, इतना तो मुझे स्मरण है। चिरंजीवी काकभूषण वशिष्ठ महाराज को कहते हैं। राम जी 12 वक्त पधारे और वाल्मीकि ऋषि 3 बार आए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। वाल्मीकि समाज वालों को कोई बहका देते कि देखो नारद जी और वाल्मीकि जी के संवाद के लिए ऐसा बोलते वैसा बोलते, लेकिन बहकाने वालों की अकल को ये भी जांच करना चाहिए कि आप अपने को जब बोलते हम वाल्मीकि समाज के हैं, वाल्मीकि भगवान को मानते हैं, तो योग वशिष्ठ महारामायण हम पढ़ते तो वाल्मीकि भगवान का ही तो पढ़ते, वाल्मीकि ऋषि रामायण के आधार पर और रामायणों की रचना हुई, हम उनका तो आदर करते स्नेह करते। जो तुम्हें हिंदू संस्कृति से सवर्णों से अथवा शेड्यूल कास्ट वालों से पृथक करके अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं, उन लोगों से बावजूद आप किनारा करो। आप सभी हिंदुस्तानी हो, आप सभी भारतवासी हो, और सभी विश्ववासी भगवान की संतान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किन स्वार्थियों ने झगड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जो शेड्यूल कास्ट वालों को बहकाते और सवर्णों के प्रति जहर उडेलते हैं, ऐसे लोगों से बावजूद बचना चाहिए। न सवर्ण बुरे हैं, न शेड्यूल कास्ट वाले बुरे हैं, न वाल्मीकि समाज वाले बुरे हैं, न मुसलमान सभी बुरे हैं, न हिंदू सभी बुरे हैं, न ईसाई सभी बुरे हैं। मैं तो सभी सांपों को भी बुरा नहीं कहता। जयराम जी, सांप की भी आवश्यकता है धरती पे भाई। वे लोग महामूर्ख हैं कि जात बात का विद्रोह कराकर, मार काट लड़ाई झगड़ा कराकर दूसरों को सुखी करने का अंधा आश्वासन देते हैं। इस्लाम खतरे में है, कश्मीर में से हिंदुओं की कत्ल करो चैन से जियो, सिखों को बहकाते ये हिंदू है और अपन सिख है सरदार है, अमुक को बहकाते अमुक ये। कुछ तो इतने बद्दे बेवकूफ लोग नलायकी करते हैं कि हिंदुओं को बहकाते कि तुम्हारे देखो गुरु ग्रंथ साहिब वाले नानक जी क्या बोल रहे हैं। इस ब्रह्मज्ञानी संत नानक के लिए भी वर्ग विग्रह करके अपनी रोटी सेकने वाले संकोच नहीं करते। नानक ने क्या कहा है पता है तुमको? राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार। राम जी के लिए ऐसा बोल दिया नानक ने, राम गयो रावण गयो और उसका बड़ा परिवार भी चला गया, ऐसा नानक जी ने बोला। और आप नानक को मानते हो, ग्रंथ साहिब को मानते हो, आप हिंदू होकर इन सिखों के गुरुओं को मानते हो। हो सिखों से हिंदुओं को अलग करने का ये षड्यंत्र है, नानक जी के लिए नफरत पैदा करने का या सिख धर्म के प्रति कुछ उपरामता या नफरत पैदा करने वालों का ये षड्यंत्र है। सिख धर्म पराया नहीं है, सिख धर्म सिख जो गुरु की माने वो सिख धर्म और वेद और पुराणों का अध्ययन करवाकर गुरुओं ने ग्रंथ साहिब की रचना कराई। सिख धर्म वैदिक धर्म से अलग से नहीं है, वैदिक धर्म की ही वो शाखा है और वैदिक धर्म की ही खबर है सिख धर्म। अगर नानक जी को राम जी के प्रति श्रद्धा भक्ति न होती तो नानक जी ऐसा कैसे बोलते? संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। ये भी तो नानक जी कह रहे हैं, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को तास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये उनकी सरलता नहीं दिख रही है? उनकी हिंदू संस्कृति के प्रति रग रग में पुकार वो नहीं दिख रही है? सत्य समझाने के लिए संत ने कह दिया कि राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार। तो राम जी जैसे राम जी और रावण जैसा कूटनीति से भी सदा रहना चाहे तो नहीं रहे, और राम जी का भी सागर और साकार विग्रह और राज्य नहीं रहा तो तुम्हारा ये शरीर और धन दौलत कब तक रहेगा? आप आसक्ति निकालकर भगवान की शरण जाओ, ये कहने का उद्देश्य उस महापुरुष का नहीं समझते हैं। महापुरुष की बात की वो खाल की बाल की खाल उतार के विकृति करके जो समाज को लड़ाना चाहते हैं, ये वाल्मीकि जी के लिए ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, अपन धार्मिक समाज के वो है। अरे भैया तेरी खोपड़ी में क्यों ऐसा स्वार्थ और विद्रोह भरा है तूने? तीन तीन बार भगवान वाल्मीकि पधारे हैं और तू वाल्मीकि समाज का तो तूने ही ठेका लिया, क्या वाल्मीकि ऋषि हमारे नहीं है क्या? राम जी के वाले राम जी का ही ठेका लिए तो राम जी दूसरों के नहीं है क्या? जयराम जी की कृष्ण का ठेका लेके हमारे कृष्ण के लिए ऐसा क्यों बोला? आपके कृष्ण के लिए अगर मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं और मैं द्वेष से बोलता हूं तो आप विरोध करो, लेकिन श्री कृष्ण के बदला मैं कन्हैया कह देता हूं तो क्या बुरा हो गया? नटखटिया कह देता हूं तो क्या बुरा हो गया? जयराम जी हमारी मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है, तो वैष्णव तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं और जो समझदार है वो तो हमको बड़ा स्नेह करते हैं किसी भी समाज के हैं, लेकिन जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वो दूसरों को बहका देते हैं कि देखो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उनको वाल्मीकि जी से कोई लेना देना नहीं, उनको राम जी से कुछ लेना देना नहीं, नानक जी से कुछ लेना देना नहीं, उनको तो अपने अंधे स्वार्थ के कारण समाज को अंधी दिशा में भड़काना है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे श्राद्ध कर्म से क्या होता है भैया? देखो लाला, कई पारसी और कई ईसाइयों को भी वैदिक संस्कृति के अनुभव हुए। योग यात्रा भाग तीसरे में लेडी मार्टन का अनुभव आप पढ़ के देखना। ईसाई धर्म में रहने वाली लेडी ने शिव जी की शरण ली और अफगानिस्तान में उसका पति मृत्यु के बीच झोंके खा रहा था, कई साथी कट मर रहे थे और शिव जी प्रकट हुए तो भारतीय संस्कृति के वैदिक मंत्र की सच्चाई ईसाई लोगों को भी अगर देखनी है तो दिख जाती है, मिल जाती है। कई मुसलमानों को भी हिंदू संस्कृति की सच्चाई का दर्शन हुआ। ऐसे रामकृष्ण ने मुसलमान फकीरों के अनुरूप अनुभव किया तो उनको भी कुछ यात्रा में दिखा, चमत्कार होते हैं। इस्लाम धर्म की मुख्यता, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, विश्वास की, श्रद्धा की। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है। ईसाई धर्म में प्रार्थना और सेवा की प्रधानता है। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है। लेकिन सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, करुणा, ये सद्गुणों की तो व्याख्या है, इनका तो आदर है। लेकिन सनातन धर्म में हित की प्रधानता है। जिस प्राणी का सचमुच में जिस ढंग से हित होता है, फिर चाहे वो ऊं और ना ना करे और विरोध करे, फिर भी बच्चे को थप्पड़ मारकर कड़वी दवा पिलाना माँ का कर्तव्य हो जाता है। बंदी को सजा देकर उसके हित की भावना से न्यायाधीश जेल में भेजता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जयराम जी की। अपराधियों को रोकने के लिए कोई कड़क कानून बनाकर टाढ़ा वाढ़ा का काम कर लेता है तो उसको पाप नहीं लगता है। जयराम जी की। हाँ, लेकिन द्वेषपूर्ण किसी को, सज्जन को भी टाढ़ा में धकेल देता है तो उसको फिर उसका तेज यश और पाप क्षीण, पुण्य क्षीण होने लगता है। हित की प्रधानता बताने वाला सनातन धर्म हिंदू धर्म है। तो आपका हित कैसे होता है कि आपका अकेले का हित से आप अकेले नहीं हैं, आप लंबी जंजीर की एक कड़ी मात्र हैं। आप अपने पिता से, दादा से परदादा अपने पिता से, और वे अपने पिता से, वे अपने पिता से जुड़े हैं, और आप अपने बेटे से जुड़ेंगे या जुड़े हैं, तो आप अकेले नहीं इस धरती पर। तो आप जो कुछ करते हैं वो आपके पुत्र परिवार के लिए तो करिए, लेकिन आपके पूर्वजों के लिए भी करिए, ताकि जिन्होंने खून पसीना बहाकर आपको इतना इतना सुसन्मानित और सुयोग्य किया और सब कुछ देकर चले गए, तो उनके लिए आप अगर 12 महीने में एक दिन श्राद्ध कर्म करते हैं, अमास अमास को करते तो हर दिन उनको तृप्त करते हैं, नहीं तो 12 महीने में एक दिन करते तो हर 12 दिन आप उनको तृप्त करने का पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन बाबा जी, बात तो ये है कि खीर खिलाए बम्मन को यहाँ और हमारा दादा है पितृलोक में, वो कैसे तृप्त होता है? सुन ले बड़े मियाँ, ईसाई भैया सुन ले, तू यहाँ रुपए जमा करा दे तो दुबई में तेरे मित्र को द्राम होकर मिलते हैं, अमेरिका में डॉलर बनाकर दिए जाते हैं और यूरोप में पाउंड बनाकर दिए जाते हैं, और देशों में अपने अपने देश की करेंसी बनाकर मानवीय सरकार तुम्हारी दी हुई करेंसी को बदलने में सक्षम है, तो ईश्वरीय वैद्य और धर्म की सरकार तुम्हारे उस तत्व का, तुम्हारे उस सेवा का उनके अनुरूप पदार्थ देने में सक्षम क्यों नहीं हो सकती है? बोले बाबा, मेरा बाप मरकर पितृलोक में नहीं गया, वो घोड़ा बन गया है, मनुष्य बन गया है, और मैंने श्राद्ध किया तो उसका क्या होगा? श्राद्ध किया वो किसी मनुष्य योनि में है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को जिसका मैंने श्राद्ध किया, वो जहाँ जन्मा है उस लड़के को मैं देखता हूँ, और जिस दिन श्राद्ध करता हूँ उन दिनों में उसकी मति और उसकी व्यवस्था सुंदर होती है, ऐसा हमने देखा। राम जी से बढ़कर तो ये पगारदार पादरियों की अक्कल नहीं है, भगवान राम ने पुष्कर राज में आकर कंदमूल से दशरथ का श्राद्ध किया था, और राम राज्य अभिषेक हुआ तो वहां भी व्यंजनों से अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया। मैं महाराष्ट्र में ले चलता हूं तुमको, चलो पैठान जाते हैं। एकनाथ महाराज बुद्धिमान थे और भगवान कृष्ण श्रीखंडी का रूप लेकर एकनाथ जी की महाराज की कभी कभी सेवा करने को प्रकट हो जाते थे। इतने उच्च कमाई के धनी एकनाथ महाराज जब कथा करते तो गोदावरी माता महिला का रूप लेकर उस महापुरुष के सत्संग का रसपान करके अपने अंतःकरण को भगवत रस से पावन कर देती थी और अपने पाप क्षय होने का एहसास करती थी। लोग गोदावरी मात की जय, गंगे मात की जय करके कुंभ मेला करते हैं नासिक में, और वो माता जी गोदावरी माँ एकनाथ महाराज के सत्संग में जाकर पावन होती है, ये कथाएं भी आती है। ऐसे संत पुरुष ने श्राद्ध कर्म के एक दिन पहले सीधा सामान मंगा कर तैयारी की। सुबह सुबह होते ही उस दयालु संत के निवास के आसपास भिखमंगों की कतार लग जाती थी। भिखमंगे आपस में चर्चा कर रहे हैं, यार आज तो बड़ी सुगंध आ रही है, आज तो हलवा पूरी छन रहा है, आज तो खीर की खुशबू आ रही है, अरे कई व्यंजन है। दूसरे ने कहा बस मुंह में पानी लाते रहे बे, तेरे को क्या मिलेगा, हम तो भीख मंगे, टुकड़ा टुकड़ा मिल जाएगा, आज टुकड़ा नहीं मिलेगा तो दो दो पूरी मिल जाएगी, धक्का मिलेगा। ने कहा नहीं नहीं, एकनाथ महाराज तो भरपेट देते, लेकिन आज तो व्यंजन है, भरपेट थोड़े मिलेंगे। उन भिखमंगों की वार्ता उस महापुरुष ने खिड़की से सुन ली, अपनी धर्म पत्नी को बुलाया, गिरजा क्या रसोई के व्यंजन तैयार हो गए? बोले हाँ नाथ, बस आखिरी है खीर चूल्हे से उतारनी है, उसमें थोड़ी सी कस्तूरी डाली और बड़ी केसर डाली, बड़ी खुशबू फैल रही इलायची के और केसर के, और भीख मंगे कुछ काना फूस करे, मैंने भी सुना है, तू ऐसा करना गिरजा, ये सारे व्यंजन सारे ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाए वस्तुएं बनाई, इन बेचारों को पत्तलों पर बिठाकर भरपेट तृप्त करे, तो तू नहा धोकर 11 बजे 11:30 बजे के अंदर अंदर मध्यान्ह की रसोई ब्राह्मणों को खिलानी है श्राद्ध कर्म के, तो बना सकती? बोले नाथ संकोच ना करो ना, अवश्य हो जाएगी, ये 8 बजते ही हो गया तो भी 3 घंटे और है, आज सवेरे मैंने शुरू किया हो गए सब कुछ, और भी तो सेविकाएं लगी है मेरे साथ में, हो जाएगा जो आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा, बस मेरा जीवन। क्या पतौरता नारियां हैं देश की, ऐसी नारियों का राष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए, उनको तो नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने देश में आकर देशवासियों को विधर्मी बनाया और देश के पैसों से, अथवा हमारा देश हिंदुस्तान कंगाल है, परदेश से लाकर पाव पाव दूध बांटा और उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला है अंतिम यात्रा में, समझने वाले समझ रहे हैं। जयराम जी, समझने वाले समझ गए। ऐसी देवियां हैं कि कई गरीब गुरबों को खिलाती हैं, एक दो नहीं, 10 नहीं 50 100 नहीं, भारत में लाखों ऐसी माताएं होगी, लेकिन एक साध्वी ने गरीब गुरबों को खिलाया, देश परदेश से लाके इधर उधर बांटा और पिक्चर विक्चर और शॉर्ट्स वॉर्ट्स लेकर प्रचार प्रसार हुआ। अब उनके लिए तो क्या क्या हो रहा है, और लाखों लाखों ऐसी देवियां हैं, उनको कोने में कोई पूछता ही नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, हम अपने देश में पराये से हुए चले जा रहे हैं। श्रद्धालु होना तो अच्छा है, लेकिन बुद्ध होकर जीना बहुत बुरा है, सावधान है। और बोलते तक नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, सब गूंगे होकर अंदर खदबद होते हुए देखे जा रहे हैं। कोई खुले आम आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई, किसी उपदेशक की हिम्मत नहीं हुई, मैंने तो उन्हीं दिनों में गर्जना कर डाली थी। हाँ, हम सभी के सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का, सभी समाज सेवकों का सम्मान करते, लेकिन कहीं कहीं अति करके अंधविश्वास अथवा फिर देश को गुलाम बनाने के षड्यंत्र के शिकार तो नहीं बन रहे? अगर बुद्धिमान भी नहीं सोचेंगे तो क्या मूर्ख लोग भैंस चराने वाले और गधे चराने वाले सोचेंगे क्या? जयराम जी की, जो क्रीम माइंड है बोले अपना क्या, फुर्सत नहीं मिलती है, और जिनको फुर्सत मिलती है उनके पास सोचने की क्षमता नहीं, और देश धकेला जा रहा है किधर। अपना क्या, पड़ोसी के घर में आग लगी, अरे मूर्ख महामूर्ख, पड़ोसी के घर की आग बुझाने दौड़, नहीं तो तेरे घर में आग लग सकती है। कोई बेचारा गुंडे लुच्चे लोफरों के दबाव का शिकार हो रहा है तो सज्जन चुप्पी साधेंगे, तो फिर सज्जनता का गला घुटता जाएगा और दुर्जनता का विश्व हौसला बुलंद होता जाएगा। अच्छों को संगठित होकर बुराइयों से लोहा लेना चाहिए। जयराम जी की। भले लोगों को संगठित होकर बुद्धिमानी का उपयोग करके देश के अहित करने वाले तत्वों का, संगठनों का अथवा प्रचारकों का विरोध करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैठे रहे बस, क्या करें, राम जी जाने अपना क्या, ठाकुर जी जाने, भोलानाथ जी जाने। अरे भोलानाथ भी त्रिशूल रखे, राम जी भी धनुष बाण रखे यार, तू क्यों ऐसे गिगड़ गिगड़ करे हाँ हम फिर आते हैं उस एकनाथ जी के गांव में, पैठान में। गिरजा ने अब खिला दिया होगा, उन भीखमंगों को खिलाया, पति पत्नी ने दक्षिणा दी और भीख मंगे। नारायण रूप है ये भारतीय संस्कृति का साक्षात, जिनके जीवन में पद पद पे दिखता था, ऐसे संत की देवी ने फिर से भोजन बनाया। लेकिन पैठान के ईगो प्रधान ब्राह्मणों को अपने अहंकार पर थप्पड़ लगी। बोले जो ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया वो इन अपराधी व्रति वाले, जो नहाते नहीं धोते नहीं मंदिर में जाते नहीं, बीड़ियां फूंकते तंबाकू खाते हैं, और कई तो चोर डाकू भी साधु का रूप लेकर भिखमंगों का रूप लेकर बैठे, इनको खिला दिया एकनाथ जी ने, हमारी बराबरी इनसे की, हमें एकनाथ महाराज का बहिष्कार करना होगा। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और पूरे पैठान के ब्राह्मणों से हस्ताक्षर करवा दिए, एकनाथ महाराज के भोजन समारंभ में कोई नहीं जाएगा। अशुद्ध का तो विरोध करते नहीं और संत का विरोध करने की अक्कल लड़ा रहे, कैसे बेवकूफ रहे होंगे। जो अशुभ है अपने चित्त में जो दोष है उसका विरोध करो, समाज की हानि करे उनका विरोध करो, कि महापुरुष का विरोध करने की अक्कल सूझी मूर्खानंद। लेकिन महापुरुष भी कोई जैसे तैसे नहीं थे, वो भी पक्के गुरु के चेले थे, जनार्दन स्वामी से दीक्षा ली थी, और जनार्दन स्वामी मेरे साक्षात भगवान दत्तात्रेय है। चैत्रवद 6 ये पैठान में पर्व मनाया जाएगा, भविष्यवाणी की एकनाथ में पंच पर्वों के नाम से ये मनाया जाएगा। अभी पैठान में ये मनाया जा रहा है, चैत्रवद 6 पंच पर्व। कौन से पर्व के, अभी तो 4 पर्व है, बाद में तुम देखना ये पंच पर्व होंगे। एक पर्व ये था कि जनार्दन स्वामी को दत्तात्रेय के दर्शन हुए थे चैत्रवद 6 को, जनार्दन स्वामी से दीक्षा मिली थी एकनाथ को चैत्रवद 6 को, जनार्दन स्वामी का जन्म हुआ था चैत्रवद 6 को, और इस महापुरुष की अब ये भविष्यवाणी कह गई कि ये 4 चैत्रवद छठियां तो अपन मनाते, लेकिन पंच चैत्रवद छठियां पंच पर्व के नाम से मनाई जाएगी। आप देखोगे क्या हुआ, समय के फेर ने महापुरुष का शरीर निर्वाण भी चैत्रवद 6 को हुआ, अभी पैठान में पंच पर्व के रूप में चैत्रवद षष्ठी मनाई जाती है। लोग बोलते बापूजी आपका जन्म भी चैत्रवद 6 का है, मोटेरा में मनाया जाता है, मनाओ न मनाओ इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन ऐसे पुरुषों का भी विरोध हयाती काल में हुआ, जिनकी एकनाथी भागवत सुनकर विद्वानों का हृदय भर जाता है, सिर झुक जाता है, ऐसे एकनाथ महाराज का बहिष्कार करो। कौन कर रहे, अपने वाले हिंदू और ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण ही विरोध कर रहे, बड़े शर्म की बात। नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण थे और उनका मामा नरसिंह मेहता एक्शन कमेटी का मेंबर हुआ महामूर्ख। नरसिंह मेहता ऐसे हैं वैसे हैं, कुप्रचार करने वाली कमेटी में नरसिंह मेहता का मामा मेंबर हुआ है, नरसिंह मेहता ब्राह्मणों में नागर जाति के हैं, भगवान ने उनकी हुंडी भरी है, रत्नाबाई के साथ नरसिंह मेहता का गलत संबंध है, ऐसा कुप्रचार हो गया। रत्नाबाई नरसिंह मेहता को अपने हाथों से पानी पिलाती है, लेकिन उसके जो चमत्कार और महापुरुष की जो सच्चाई साबित हुई उनके जाने के बाद लोग जय जयकार करते हैं, उनको तो नालत देते हैं। नालत लेने वाले संत के विरोधी कौन से नरक में सड़ रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन नरसिंह मेहता को तो अभी भी गुजरात में और देश में करोड़ों लोग जानते हैं। महावीर का विरोध किया महावीर के कुटुंबी ने, गोशालक महावीर के संग में भर्ती हो गया और अपनी कुछ चलाने लगा। महावीर ने एक दो बार उनको चेतावनी दी, बाद में उसने क्या करा कि महावीर के संग में घुसकर करीब 500 भिक्षुकों को अपने पक्ष में कर दिया। जैसे वीपी सिंह कांग्रेस में रहकर हुए कांग्रेसियों को लेकर अपना जलवा दिखा लिए थे, ऐसे ही उसने महावीर के संग में रहकर 500 लोगों को अपने पक्ष में करके महावीर का खुला विरोध चालू कर दिया। पब्लिक की रोटी खाते भक्तों की, धर्मादे की रोटी खाते और निंदा करते भगवान महावीर की। रोटी देने वाले कैसे भगतड़े होंगे, निंदा सुनने वाले कैसे मूर्ख होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं महावीर को अभी भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मूर्खों से लोहा लेते रहे और अपना धर्म प्रचार करते रहे। अभी करोड़ों लोग महावीर को जानते हैं। गोशालक कौन से नरक में मैं नहीं बता सकता, उनके साथ जो गद्दार जिस गुरु का टुकड़ा खाकर गुरु का निंदा करने लगे वो गद्दारों को मैं नहीं जानता कि कौन से नरक में और कौन सी योनि में है, लेकिन महावीर के विषय में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे ही नानक के विरोधी बकते रहे, वो कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन नानक की वाणी तो मेरे हृदय में आपके कानों तक पहुँचा देता हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भगवान वशिष्ठ जी बाजार से गुजरते और निंदक लोग राम के गुरुदेव की निंदा करने से नहीं चुकते। योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण में आया कि राम जी मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मेरे लिए निंदक लोग क्या क्या बकते और अफवाह फैलाते हैं, राम जी मैं तुमको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि संत में अगर एक भी गुण है तो ले लीजिए, उनके दोषों को न सुनिए न विचारिए, उनका गुण लेकर अपना कल्याण कर लेना मनुष्य का कर्तव्य है। जब निंदकों ने नानक देव की और दूसरे धर्मात्मा और संतों की निंदा का ठेका ले लिया तभी शायद नानक की वाणी के द्वारा प्रचार हुआ होगा, सिख धर्म के द्वारा ही प्रचार हुआ होगा। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश, संत का निंदक बघड़ रूप हो जाए, तुलसीदास महाराज ने लिखा। हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना, हरि गुरु निंदक दादुर हो वही जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। वो पैठान के निंदकों ने इमरजेंसी मीटिंग में फैसला कर दिया कि एक नाथ के यहाँ कोई श्राद्ध कर्म भोजन लेने नहीं जाएगा, भले उनके पितर असंतुष्ट हो नरक में पड़े इनकी खबर पड़ेगी बाबा की, लेकिन बाबा कोई जैसे तैसे बाबा नहीं थे। देखा कि ब्राह्मणों ने हड़ताल पुकार दी है, ऑटो वाला हड़ताल टैक्सी वाला हड़ताल करते ने तो कोई दूसरी ऑटो न चल पड़े सड़कों पे खड़े होते, ऐसे ब्राह्मणों ने दो लठधारी चौकीदार रख दिए एक नाथ के द्वार पर, कोई ब्राह्मण आ न जाए। अब एक नाथ ने देखा कि 11 तो बज गए, मध्याह्न भोजन का समय हो गया, ब्राह्मणों ने तो ये कर लिया, अब क्या करें। पद्मासन बांधा और अपनी वृत्ति को सूक्ष्म सूक्ष्म तर बनाकर पितृलोक में प्रवेश करा दिया अपने चित्त को, और श्री माली के दादा का आमंत्रण कर दिया, किसी के बाप का किसी के काका का जो अभी अभी मर गए थे उनके बाप दादे और पुरखे उन सब का पितृलोक से आवाहन करके भोजन समारंभ में बिठा दिया, और वे लोग भोजन करते जाए और बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलते जाए। नृत्यावसाने नटराज राजो नादडंकम नव पंचवारम उर्धातु कामासन कादि सिद्धा नेतादि महर्षे शिव सूत्र जालम। ब्राह्मण भोजन करते करते श्लोक बोलते और शिवजी पर श्लोक ज्यादा होते हैं। शिव सूत्र जालम नम पार्वती पते हर हर महादेव। ब्राह्मण जब मौज में आकर पंक्तिवत भोजन करते और श्लोकों की वह छटा होती तो वो भी दृश्य मजेदार होता है। वो आवाज सुनकर लठधारियों ने दरार से देखा कि अरे ये तो श्री माली का दादा, ये फलाने का पुरखा, ये फलाने का बाप, ये फलाने का काका। वो भागे गांव में, बोले तुम तो नहीं गए, तेरे बाप दादे तुम्हारे चाचे वहां भोजन कर रहे। लोग आए इतने में तो वो लोग भोजन करके सम्मानित होकर रवाना हुए। एक जो कुबड़ा था ब्राह्मण आखिरी में तामुल फल लेने को रुका, उनको जाते जाते देखा, फिर सभी पैठान के ब्राह्मण एक नाथ महाराज के चरणों पे गिर पड़े के बाप जी भूले हो गए अंदाता फरी गुरी गोगी गुआ गया। हिंदू खाली गले में कपड़ा डाले और दांतों के तरफ यूं कर दे के भाई चलो बेचारा माफी मांगता। संत प्रवर ने उनको गले लगाया, मैं उन ब्राह्मणों को शाबाश देता हूँ कि जल्दी से अपनी निंदा वृत्ति हटाकर संत की शरण पहुंच गए, फिर भी शाबाश है, उन ब्राह्मण देवताओं को धन्यवाद है। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि, नारायण हरि। बोले बाबा जी मेरे पिता पितामह पितृलोक में हैं, तब तो चलो श्राद्ध कुदरत के नियम के अनुसार उनके उन भोग के अनुसार मिलता है, अथवा हम आह्वान करते हैं और वो सूक्ष्म रूप में आते हैं और भावना से वे तृप्त होते हैं, ये भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा बाप घोड़ा बन गया है, अगर बन गया तो फिर उस श्राद्ध का क्या होगा? अगर तेरा बाप घोड़ा बन गया है, कई योनियों में घूमते घामते अब घोड़े की योनि में है, तो उस दिन उसको चारा बढ़िया मिलेगा और चने भी मिलेंगे रूखा सूखा के बजाय। वो घोड़े गाड़ी वाले के मन में प्रेरणा होगी उसके पुण्य प्रताप से कि आज रजका खिलाओ मेरे घोड़े को, शाबाश बेटा राजू, बेचारा दुबला हो गया, बाहर नहीं खींच सकता है, चलो इसको बेच दे, किसी सुखी जगह पर रवाना हो जाएगा तेरा भूतपूर्व पप्पा। जय राम जी की। अगर तुम किसी व्यक्ति को जेल में जा रहा है उसके नाम के पैसे भर देते हो तो उसकी जो 6 महीने सजा और 10,000 दंड, नहीं तो 9 महीने सजा, आपने 10,000 भर दिए तो 9 महीने के बदले 6 महीना हो जाता है कि नहीं होता? होता है। और अगर आपने कहीं लाग वग की और कोई अच्छे नेता को रिझा दिया और उस जेलर को रिझा दिया तो आपके घर का टिफिन उस तक पहुँच जाता है और कभी कभी पैरल पर छूट कर आ जाता है। ये तो गड़बड़ के जमाने में, लेकिन ईश्वर के राज्य में तो ये विधान है कि शुभ कर्म का फल ऐसे होता है। भगवान राम ने अपने दशरथ पिता का श्राद्ध कर्म होने वाला है कल को, और भुजाएं ऊपर उठाकर कहा कि कल पिता दशरथ का अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म है, यक्ष सुन ले, गंधर्व सुन ले, देव सुन ले और देवादि महादेव भी मेरे दास राम की प्रार्थना सुन ले, अगर पधार सको तो अवश्य पधारना। कुछ लोक आए, इसमें लोक महेश्वर भगवान शंभ सदाशिव बाबा का रूप लेकर बैठ गए पंगति में। इनको भी कभी न कभी कुछ विनोद चाहिए, सदा समाधि में भी नहीं बैठा जाता, कभी न कभी विचरण विनोद चाहिए। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम, नाचे भोलानाथ। तो कभी मोहिनी रूप का दर्शन करके भोलानाथ प्रसन्न होते, तो कभी कुछ कभी। मानो न मानो ये हकीकत है कि खुशी चित्त की, खुशी इंसान की जरूरत है। भोलेनाथ आ गए, हाय राम राज्य में भोजन की व्यवस्था पवित्र सुविधा और सुंदर थाल परोसे गए और साधु बाबा खाए खाए, लेकिन ये महासाधु तो यूं हाथ घुमाए तो सफा, परोसने वाला फिर वहीं आए, फिर यूं घुमाए तो सफा, परोसने वाले परोसते चले गए और हाथ घुमाने वाला जो त्रिभुवन को स्वाहा कर सकता है वो थाल को साफ करने में उसके लिए तो साड़ी उंगली का खेल है। हम कर दिया स्वाहा और परोसने वाले थके, आखिर भरत भैया को कहा, शत्रुघ्न को कहा कि ये बाबा जी की सेवा करके हमारा पसीना चल पड़ा है, फिर शत्रुघ्न भैया ने परोसा, आखिर फिर शत्रुघ्न भैया ने रखे बर्तन, भरत भैया ने अपना आजमाया भाग्य। भरत भैया थके, रसोई कहने लगे कि एक तरफ सारी जमात और पंगत और एक तरफ तुम लोग और तुम्हारे बाबा लोग। अब ये साधारण गृहस्थी के घर से भी साधु को आधे में नहीं उठाया जाता, तो राम जी के राज्य में किसी साधु को कह दे कि महाराज अब हो गया उठो, जूते पड़े। शत्रुघ्न और भरत गए राम जी के पास, प्रभु जी प्रभु जी, एक महापुरुष ऐसे आए कि बहुत सेवा का लाभ दिया है, इतनी सेवा का लाभ दिया कि परोसने वाले थक गए, हम भी थक गए, और वो देंगे भी अब। जय जय सियाराम कहने की तैयारी में है, आप जरा पधारो दर्शन करो। राम जी दर्शन करते जा रहे, मन ही मन राम जी मंद मंद मुस्कुराते, रूप बदल कर रूपातीत कालातीत देहातीत मेरे इष्ट देव भगवान शंभ सदाशिव, मन ही मन नमस्कार किया, मंद मंद मुस्कुराए। अब वो बाबा के तरफ राम जी निहार रहे और राम जी के तरफ बाबा जी निहार रहे, दोनों मंद मंद मुस्कुराए। राम जी बोलते इस बाबा के लिए तो परोसने के कार परोसने की सेवा माता जी कर सकेगी, माँ अम्बा को बुलाएं, माँ पार्वती को। देखो राम जी के चित्त में तनिक भी द्वेष नहीं कि इसी पार्वती ने मेरी परीक्षा ली थी, नहीं नहीं, आदर सहित बोलते माँ का स्मरण कर। शिव जी बोलते छोड़ो अब खेल खत्म हो गया, चलो राम जी तुम्हारे शयन खंड में आराम करेंगे। शयन खंड में आराम करने गए, सीता को कहा पानी लाओ, पानी का लोटा उड़ेल रही है कलश सुवर्ण का, पूरा कलश मुंह में भर के जोर से पिचकारी मारी दोनों के ओर, लेकिन दोनों के चेहरे पर देखा कि जरा भी शिकन नहीं। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। दुखद अवस्था आए चाहे सुखद आए, लेकिन आप अपना हौसला बुलंद रखें तो आपके लिए संसार स्वर्ग हो जाएगा, नहीं तो सुख में चिपक जाओगे और दुख में उद्विग्न हो जाओगे, तो आपका आत्मबल क्षीण होता जाएगा और प्रकृति और माया का प्रभाव आपको दबोच देगा और कई योनियों में ले जाएगा। शिव जी ने दोनों पर पिचकारी दे मारी, लेकिन एक शिकन नहीं पड़ी सीता जी के चेहरे पर, राम जी के चेहरे पर। खैर राम जी के विषय में तो शिव जी को पहले ही पता था कि शिव स्वरूप में तत्व में जगे हुए पुरुष हैं, आदि नारायण हैं, लेकिन सीता को भी जगत जाने जगत जननी को, सीते मैंने तुमको देखो क्या कर दिया, हे कुल्लावा दे मारा। सीता दुखी तो नहीं? नहीं नहीं प्रभु, हम अरण्यवास के तरफ उधर को गए थे, दक्षिण के तरफ, गंगा माह में स्नान करने नहीं आए, तो आपने घर बैठे में स्नान कराया, ये तो आपकी करुणा है। घटना चाहे कैसी घटे, आप अर्थ कैसा लगाते, सीता जी से सीख लीजिए, राम जी से सीख लीजिए, कृष्ण से सीख लीजिए, एकनाथ महाराज से सीख लीजिए। बाहर की परिस्थितियां बदल देना आपके हाथ की बात नहीं, लेकिन अपनी समझ को बदलकर जंजट प्रूफ, प्रॉब्लम प्रूफ, चिंता प्रूफ बनाना, ये आपके हाथ की बात है और वो आप कर सकते हैं। जयराम जी की, आपके मन चाहा सब लोग करें ये जरूरी नहीं है, और आपके मन चाहा ही हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप मन को सदा सम और सुखी रखें ये आपके हाथ की बात है। जो आपके हाथ की बात है वो कर दीजिए ना, जो हाथ की बात नहीं उधर को काय को समय बर्बाद कर रहे। वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गाय। शिव जी उठकर बैठ गए। राम जो मांगना है मांग लो, सीते तुम मांग लो। सीता कहते कि मेरे प्रभु जो मांगेंगे उसमें मेरी मांग पूरी हो जाती है। कैसी है भारत की देवियां, अभी भी ऐसी कई देवियां मिलेंगी, पति के संतोष में उनका संतोष, पति के खुशी में उनकी खुशी, पति की विजय में वो अपनी विजय समझते हैं, पति की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझती, पति के जीवन में अपना जीवन समझती, ऐसी भारत में अभी भी कई देवियां मिलेगी। परदेश में एक शंकराचार्य गए और देखा कि कब्रस्तान में एक महिला पंखा हांक रही है, उस जगत गुरु ने शंकराचार्य ने गाड़ी रुकवाई, उस महिला के पास गए। धन्य है कि यहां भी ऐसी देवियां हैं, पति भक्ता है। देवी ये गाँव किसकी खबर है, तुम पंखा करे? वो बोलती ही वाज माय हस्बैंड, ये मेरा पति था, तो उसको शांति मिले इसे पंखा करे? बोले आई डोंट नो व्हाट मीनिंग दैट इज शांति। मैं तो ये नहीं चाहती कि पंखा हाँकने से उनको शांति मिले, लेकिन वो बीमार हो गए थे। उन्होंने मेरे को कहा कि दूसरा मैरिज नहीं करना। मैंने कहा मैं तो करूंगी। तो उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए मेरे से वचन दिया कि जब तक मेरी कब्र गीली हो तब तक दूसरा पति मत करियो। तो मैं पंखा हाँक रही हूँ, जल्दी सूखे मुआत में दूसरा करूँ। इससे तो तुम भारतवासी हजार गुने भागशाली हो कि तुम्हारी कैसी भी महिला हो इस तरह की इंतजारी नहीं करती। वो तो गंगा स्वरूपणा होकर याद करती है कि पतिदेव आपका शरीर तो मर गया लेकिन आप हमारा आत्मा है, आप परमात्मा की यात्रा करिए और मुझ पर आशीर्वाद करिए कि मेरे मन में संसार आकर्षण और विकार ना रहे। अब मैं ये सुहागे और गहने गांठों के रूप लावण्य और सौंदर्य के चीजों को सदा के लिए तुम्हारी खुशी में त्याग करके गंगा स्वरूपिणी होकर जीऊंगी। हे पतिदेव, आपका आत्मा परमात्मा का सनातन स्वरूप है और मेरा आत्मा भी परमात्मा का सनातन स्वरूप है। देह से, मन से, इंद्रियों से मैं पाप की शरण न जाऊं, मैं प्रभु की शरण जाऊं, सासू ससुरे की सेवा करूं, गुरुजनों के उपदेश को विचारूं। ऐसा विचार करने वाली देवी को तो मैं गंगा स्वरूपिणी मानता हूं, प्रणाम करता हूँ, उसके माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ। वो फूलीबाई हो गई। राजा यशवंत सिंह उनके चरणों में मत्था टेकता है। पति तो चले गए लेकिन समझ तो अपने पास है ना। अरे मैं तो विधवा हो गई रे, मर गई रे। अरे जगतपति जीवित है तो अंधात्री थे, विधवा की कर हुई। थोड़ो शरीर विधवा हो थे तो अमर आत्मा हो देवी। ऐसा ज्ञान सुनने वाली भारत की नारियों को हजार हजार बार धन्यवाद हो। नारायण हरि, नारायण। मांग लो राम, मांग लो राम जी। क्या मांग रहे हैं देखो जरा, राम मांग लो। राम कहते प्रभु ये आपके जो होरिंग है ना, एक गहने गांठे आपके अयोध्या में नहीं चाहिए देव। आपके गहने आपको ही मुबारक, हम आपसे आपके गहने नहीं मांग रहे। राम जी तू कुछ मांग प्रभु, ये शमशान की राख रमाई, ये राख भी अयोध्या में नहीं चाहिए और आपने जो बागम्बर फहरा है वो भी अयोध्या में नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज की कमी है। राम मांग लो ने प्रभु, मुझे एक ही चीज अयोध्या में कम दिखती है और सब कुछ है आपकी कृपा से। राम तुम भूमिका बना रहे हो, क्या ऐसा मांगना है कि मैं न दूं? ऐसा कैसा कोई पदार्थ है आदे जो मैं तुमको न दूं? राम भूमिका क्यों बना रहे? बोले प्रभु हम आपसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगते जो आप देखे चले जाए। हम तो आपसे आपको ही मांगते कि एक वर्ष तक अयोध्या की व्यासपीठ पर आप भी राजे और युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथा सुनाए, मेरे अयोध्या वासियों को सत्संग मिलता रहे। बार बार बर मांगू अर्ष दियो सियारंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। शिव जी वरदान दे चुके थे, वर्ष भर अयोध्या में श्री राम जी मुख्य श्रोता और सभाजन श्रोता और शिव जी वक्ता, युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथा सुनने वाले अयोध्यावासी जब राम जी अपनी लीला विसर्जित करके जो ही यमुना जी में गए, जिनकी इच्छा हो तो आ जाओ मेरे धाम में, पूरे अयोध्यावासी सशरीर भगवान के धाम में प्राप्त हो गए। कैसी महिमा है सत्संग की और कैसी महिमा है अयोध्यावासियों के पुण्य की। जो लोग बोले हमने क्या पाप किया कि सत्संग सुने, तो शिवजी ने क्या पाप किया कि अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग सुनने जाते, राम जी ने क्या पाप किया कि सत्संग की भिक्षा मांगते, वशिष्ठ के पास सत्संग सुनने जाते हैं और ऋषि मुनियों के पास वनवास 14 साल का वनवास था, जहां भी पता चलता श्रेष्ठ महापुरुषों का तो राम जी तो जाते, लखन भैया और माँ देवी सीता जी को भी ले जाते थे। जो सत्संग नहीं सुनता वो कुसंग जरूर सुनेगा, जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करेगा, जो शुभ कर्म नहीं करता वो अशुभ कर्म जरूर करेगा। जिसका मन भगवान में नहीं लगता उसका मन भोग में उसको जरूर बर्बाद कर देगा। इसलिए भगवान के इस वचन को फिर से दोहराओ। क्या दोहराओगे? अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान गामिनः चेतसानान परम पुरुषं दिव्यं परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थनु चिंतयन् याति पार्थनु चिंतयन्। अभ्यास तो सबको ही करता है, लेकिन आप अभ्यास परम पुरुष दिव्य आत्मा को पाने के लिए करिए। खाइए, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने के भाव से खाइए।